السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. ایک حکم یہ ہے کہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ دکھایا جا نہیں سکتا، اور کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ، یہ چھپایا جا نہیں سکتا. لا الہ الا اللہ اندر اور دل کی دنیا ہے، ایمان، اخلاص، اخلاق، توکل، تعلق، یہ اندر کا لباس ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ باہر کا لباس ہے، جسے سنت کی زندگی کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ دکھایا نہیں جا سکتا، محمد الرسول اللہ چھپایا نہیں جا سکتا. جو روزہ ہے یہ دکھایا نہیں جا سکتا. روزہ ایک سبق دے رہا، میں کئی دنوں سے سوچ رہا اور پتہ نہیں میرے دل میں ایک آواز آ رہی ہے، اللہ کے علم میں سے یہ مجھے ایک علم ملا ہے، ہم دعا کیا کریں، اے اللہ اپنے علم میں سے علم عطا فرما اور اپنے حلم میں سے حلم عطا فرما. روزہ ایک آواز دیتا ہے، اور آواز دیتا ہے کہ ایک بندے نے اگر کہہ دیا مجھے روزہ ہے تو یقین کر لے. روزہ اصل میں بدگمانی، شک کی زندگی سے بچانے کا ایک انوکھا نظام ہے اور ایک لاجواب مشق ہے. بدگمانی، شک اور وسوسے سے بچانے اور نکالنے کا انوکھا نظام ہے کہ اس بندے نے کہہ دیا میرا روزہ ہے، اس کا منہ کھول کے دیکھوں، اس کی زبان دیکھوں، اس کا پیٹ دیکھوں، اس کے گواہ لوں کہ تم نے سحری کی تھی، کیمرے چیک کروں کہ اس نے کہیں کھایا پیا تھا. نہیں، جہاں روزہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک معاملہ ہے، وہاں بندوں اور بندوں کے درمیان بھی ایک معاملہ ہے، اس کا تعلق اعتماد سے ہے، اور سچے اعتماد سے ہے. اس کا تعلق اعتماد سے ہے اور سچے اعتماد سے ہے کہ اس بندے نے روزہ رکھا ہے. اور یہ ہمیں ایک سبق دیا جا رہا کہ ہم لوگوں کے بارے میں بدگمانی کرنا چھوڑ دیں. پتہ نہیں آخری وقت اس کا اللہ کے ہاں کیسے ہوگا. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، بیٹھے بیٹھے میرے دل کے اندر پتہ نہیں کیا کیفیت پیدا ہوئی، میں ایسے چل پڑا اور میرا رخ سمندر کی طرف تھا. میں چلتے 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 سمندر کے قریب پہنچا تو دور سے دیکھا کہ کشتی آ رہی ہے اور کشتی میں لوگ ہیں. میں قریب اور پہنچا تو کشتی ایک دم پلٹ گئی، الٹ گئی، کشتی الٹ گئی اور کوہرام مچا. میں نے قریب ہوا دیکھا کہ ایک حبشی ہے ایک عورت کو سرائی سے کچھ جام بھر کے دے رہا. میرے دل میں خیال آیا کوئی بندہ ہے یہاں عیش و نشاط عیاشی کے لیے آیا بیٹھا ہے. بس یہ ذہن میں بات آئی. وہ حبشی بھاگا، بندوں کو نکال نکال کے لا رہا تھا، اور اس دوران میں آگے بڑھ رہا تھا اور میری رفتار تیز ہو رہی تھی. آخر ایک بندہ رہ گیا تو میرا نام لے کے کہنے لگا اس کو نکال دو. مجھے حیرت ہوئی، میرا نام کیسے جانتا ہے؟ میں نے کہا میں تیراک نہیں ہوں. وہ بھاگ کے اس کو بھی نکال کے لے آیا और ला के कहने लगा, अल्लाह का बंदा, किसी के बारे में बदगुमानी नहीं की जाती। ये मेरी माँ है, इसका दिल घुटा हुआ था, हालात सख्तियों ने गमों ने इसको दिल को तंग कर दिया था। इसके दिल की गुबार को ख़त्म करने, दिल को ठंडक पहुंचाने के लिए मैं यहाँ लाया था। किसी के बारे में बदगुमानी नहीं किया करते। कहते हैं जो मुझे ज़िंदगी में वो शर्मिंदगी हुई जो आज तक नहीं हुई, और वो सबक मिला जो आज तक नहीं मिला। वो शर्मिंदगी हुई जो कभी नहीं हुई, और वो सबक मिला जो आज तक नहीं मिला। हमारी जिंदगी में कदम कदम पे लोग, हमें तो सबके बारे में अच्छा गुमान करना है। जिस तरह हम ये देखते हैं, उसने कहा मेरा रोजा है, ठीक है आपका रोजा है। रोजेदार को कोई निशानी नहीं अल्लाह ने लगाई। कोई ऐसी अल्लाह चाहता निशानी लगा देता, एक आंख फड़कना शुरू हो जाती, माथे में से रोशनी निकलना शुरू हो जाती, रोजेदार की निशानी है, दूसरे बंदा पहचान लेता रोजेदार है। एक टांग, एक उंगली टेढ़ी हो जाती, एक टांग सीधी हो जाती, हाथ में से खुशबू निकलती, चमकदार हो जाता। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी दलील, कोई भी ऐसी अलामत, कोई भी ऐसी दलील, कोई भी ऐसी अलामत नहीं थी। एक मश्क कराई है, और वो मश्क ये कराई है कि उसने कह दिया कि मुझे रोजा है तो रोजा है। हमारे एक बड़ों में से, कांधला के बड़ों में से एक दरवेश थे, बड़े थे, बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते थे। तो एक ईंट पड़ी होती थी, वहां तक जब धूप आ जाती थी तो वो छुट्टी का वक्त होता था। बच्चे क्या करते थे, ईंट को उठा के इधर कर देते थे, और वो ईंट आती थी तो छुट्टी हो जाती थी। लोगों ने कहा, हजरत ये बच्चे आपको धोखा दे रहे हैं। मैंने, ना भाई, ना ना ना, मुसलमान धोखा दे ही नहीं सकता। हमारे एक उस्ताद थे, मेरे भी, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह उस्ताद थे, मौलाना अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह। वो फरमाते थे, मैंने दुनिया में एक शख्स देखा है जिसने आज तक किसी की गिबत नहीं की, वो कारी अब्दुल अलीम शाह साहब हैं, अभी भी जिंदा है, मेरे भी उस्ताद हैं। अल्लाह, मैंने जिंदगी में एक शख्स देखा है जिसने आज तक किसी के बारे में बदगुमानी नहीं की। रोजा हमें एक जिंदगी की सच्चाई देता है, और दूसरों पे एतमाद देता है, और हमें जिंदगी का एक सबक भी देता है कि किसी के एतमाद को ठेस ना पहुंचाए, किसी के एतमाद को नुकसान ना पहुंचाए, और हम किसी पे एतमाद करें। उसके साथ अच्छा गुमान करें। ना मालूम जिंदगी का आखिर इसका कैसे गुजरे, मेरा कैसे गुजरे। रावलपिंडी में एक अंदरून शहर में एक मोहल्ला है, वर्कशॉपी मोहल्ला कहते हैं उसे। हमारे एक मोहसिन थे, कहने लगे, एक साहब, आज तक मैंने उनकी जिंदगी में कोई नेकी नहीं देखी। बस इतने अल्फाज काफी हैं। मेरा वो बचपन का दोस्त था, तो कहने लगा, मेरा आखिरी वक्त आया, उसको बुलाओ। तो कहा, मैंने उसको बुलाया, मुझे बुलाया। उसकी आंखें ऐसे दरवाजे पे लगी हुई थी, और जब मैं आया ना, तो मुझे देख के कहने लगा, बस तू आया ना, तो मेरा दोस्त था, यार था, मैं तेरा इंतजार कर रहा था, मैं तुझे अपने कलमे का गवाह बनाना चाहता था। मैं ऐसे दरवाजे में आया और कलमा पढ़ा और गर्दन ढलक गई उसकी। कहा, मुझे वो जिंदगी का जो झटका लगा, मैं तो उसे पता नहीं किस दुनिया का बंदा समझता था, और जहन्नम के आखिरी तबके का आदमी समझता था। निगाहे ऐब गिरी में जो देखा अहले आलम को, कोई काफिर कोई मुशरिक कोई जिंदी की अकबर था। निगाहे ऐब गिरी में जो देखा अहले आलम को, कोई काफिर कोई मुशरिक कोई जिंदी की अकबर था। मैंने ऐब की नज़र से जब आलम को देखा तो कोई काफिर था कोई मुशरिक था कोई जिंदी की अकबर था। फरमाया, बड़े फरमाते हैं, टोकने का हक उस्ताद को, मुर्शिद को और माँ बाप को है और किसी को नहीं है।
अल्लाह हू अकबर।
उस्ताद को, मुर्शिद को और माँ बाप को है टोकने का हक। तो हमारी जिंदगी में रोजे रोजा रख के कि मैं रोजे से हूं, बस ये एक सबक है कि मैं रोजे से हूं और हमने उस पर एतमाद कर लिया। जिंदगी में कितना निजाम ऐसा है और कितनी तलाकें और कितने झगड़े और कितनी नफरतें और कितनी जुदाइयां और कितनी बेइकरामियां सिर्फ और सिर्फ बदगुमानियों से होती है। उसके पीछे हकीकत में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ बदगुमानियों से होती है, हकीकत में कुछ नहीं होता। और एक बदगुमानी है जो घरों को खा जाती है, जो शक और जो घरों को उजाड़ देता है। कई कई खवातीन मेरे पास रोती हुई आती हैं कि हम बदगुमानियों का शिकार हैं, और कई मर्द बेचारे चीखते हुए कि हम बदगुमानियों का शिकार हैं, मियां बीवी पे, बीवी औरत पे, शौहर पे बदगुमानियां खा गई, शक खा गए। रोजा जिंदगी का सबक देता है, किसी पे एतमाद करना और किसी के साथ अच्छा गुमान करना। और पूरी साइंस कह रही है इस वक्त कि हमारी मेडिकल साइकोलॉजी, मेडिकल साइंस कहती है, टिप की साइंस कहती है कि दूसरों के बारे में अगर अच्छा गुमान करेंगे, दिल के अमराज से बचेंगे, जहनी अमराज से बचेंगे और पागलपने से बचेंगे और टेंशन एंजाइटी स्ट्रेस से बचेंगे, तनाव खिंचाव दबाव से बचेंगे और जिंदगी में सुकून आएगा। एहतियात अपनी जगह पे है, एक है एहतियात, एक है अच्छा गुमान। इस्लाम ने एहतियात का भी हुक्म दिया है पर अच्छा गुमान। हमारे यहां, हमारा अंदरून शहर में घर था, आबाई घर था, तो हम ऐसे गली से निकलते थे तो बाजार आती थी। बाजार में एक डॉक्टर साहब थे, डिस्पेंसर थे, डॉक्टर साहब कहते थे, उनके पास मरीज आते थे दवा लेने के लिए, नजला जुकाम बुखार वगैरह की दवा के लिए लोग आते थे। उनके बारे में मशहूर था कि वो हर बंदे गुजरते आदमी पे लानत भेजते हैं या उसके ऐब बयान करते हैं या उसकी खामियां बयान करते हैं। मैं एक दफा उनके पास जाके बैठा, वहां एक पुराने डॉक्टर साहब बैठते थे, पुराने डॉक्टर थे, वो चले गए तो उनकी दुकान पे वो आ गए। एक चलती दुकान थी, लेकिन जो पुराने डॉक्टर साहब थे वो फौत हुए, वो ना चल सका निजाम। मैं एक दफा जाके बैठा, उनके यहां अखबार पड़ी होती थी, लोग अखबार पढ़ने भी जाते थे, ज्यादा मरीज वगैरह नहीं होते थे। मैं ऐसे बैठा अखबार पढ़ने के लिए, मैं सिर्फ अमल देखने गया और जो आता था उसके बड़े इस्तकबाल करके मिलते थे और जब जाता था तो उसको पीछे से लानतें देते थे और हर सड़क से गुजरते के बंदे पे तबसरा करते थे। मैं बैठा रहा, बंदा गुजरा, देखो जी वो गाली देके वो जा रहा है, सारी जिंदगी ऐसी गुजरी, इसकी मां ऐसी थी, इसका बाप ऐसा था, इसका ऐसा था। एक और गुजरा, फिर उनके पास एक बंदा आया, थोड़ी देर अखबार पढ़ी गया, देखो जी मुफ्त हो रहा है, अखबार आके पढ़ता है, अपनी ले नहीं सकता, यह अखबार पढ़ता है, बिंचे हमारी तोड़ता है, कुर्सियां तोड़ता है, गंदे गंदे टिकार देता है, क्या करता है, कैसा आदमी है। तो मैं सुनता रहा, उनकी सुनता रहा, मैं उठने लगा, मैंने कहा मुझे माफी मिल सकेगी, कह रहे नहीं नहीं आप तो नेक आदमी है। मैं कह बस मुझे माफी दे देना, मेरे ऐब अल्लाह के पास हैं, बहुत हैं, ऐसा ना हो कि आपका नुकसान हो जाए, और नुकसान हो रहा है। उसकी टांग टूटी, आखिरी दर्जे का उसको शुगर था, मुझसे बयान करता था, कभी टोटके मांगता था, हाई ब्लड प्रेशर था, घर में औलाद की उलझने थी, मियाँ बीवी की उलझने थी, किसी रिश्तेदार थी उसकी बनी हुई नहीं थी, और जिंदगी उसकी तंग थी, और जिंदगी उसकी जकड़ी हुई थी, और इसी जकड़ी जिंदगी में मर गया। परेशान हाली में मर गया। हमारे बारे में तो यहां तक कहा गया। आज के सवालों में मुझसे एक सवाल किया किसी खातून ने कि मैंने एक ईसाई क्रिश्चियन की कर्जा था, उसकी इमदाद की। लोगों ने मुझे कहा क्यों की तुमने? मैंने कहा ठीक की, अल्लाह के हबीब तो यहूदियों की खिदमत करते थे। एक दफा एक यहूदी का जनाजा आ रहा था, मेरे हुजूर उसके जनाजे के लिए खड़े हो गए यहूदी। उन्होंने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये यहूदी का जनाजा है? आपने फरमाया मुझे पता था। उसने कहा जी, उन्होंने कहा कि तुमने क्यों किया, इसकी इमदाद क्यों की, इसकी उसका कर्जा क्यों उतार? मैंने कहा अच्छा किया, हम तो मुस्लिम गैर मुस्लिम सबकी खिदमत करने वाले हैं। रोजा हमें जिंदगी का एक सबक देता है, रोजा एक जिंदगी का निजाम देता है, और रोजा एक जिंदगी का एक सलूक, एक तरीक, एक अंदाज देता है, हमें एक जिंदगी का सबक देता है रोजा, और एक तरतीब देता है रोजा। और वह यह है, एक है जिंदगी अपने अंदाज की, एक है जिंदगी कमली वाले के अंदाज की, और कमली वाले के अंदाज की जिंदगी अगर चलानी है तो उसका वाहिद हल सिर्फ और सिर्फ यह है कि अपनी जिंदगी में बदगुमानी, शक और वसाविस निकाल दे, निकाल दे। कहते ये बंदा जा रहा जहन्नमी है, उसका आखिरी वक्त जन्नती हो जाए, मुझे क्या खबर। और वैसे भी एक वाक्य सुना था, हज़रत शेखुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक जनाजा जा रहा था, उसके चार पाए थे, चार पाई के तीन मर्दों ने पकड़े हुए थे, एक औरत ने पकड़ा हुआ था, यानी चौथा मर्द ही नहीं था। हैरत हुई, मैंने उस औरत से पूछा तो कहा मेरा बेटा है, मैंने उसका कंधा ले लिया, क्यों कोई नहीं आया? कहा ये मुखन्नस हिजड़ू जैसी हरकतें करता था, हिजड़ा था, नफरत की वजह से कोई नहीं आया। तो फरमाया मैंने उसका जनाजा पढ़ा, और उसका जनाजा पढ़ा तो रात को वो ख्वाब में आया, तख्त ताज जन्नत की नेमत, कि अल्लाह आपको जजाए खैर दे, आपने मेरी मां की मदद की, आपने मेरा जनाजा पढ़ा। तो पूछा ये मकाम आपको कैसे मिला? अब जवाब सुने। फरमाया लोग जो मुझ पे तान करते थे ना, लानत करते थे, मलामत करते थे, एतराज करते थे, जब मैं अल्लाह के हुजूर गया तो अल्लाह पाक ने फरमाया सारी जिंदगी लोग जो पे तान करते रहे, एतराज करते रहे, अब मैं तुझे सजा नहीं दूंगा, जा तुझे मैंने माफ कर दिया। याद रखिएगा, उसकी बेनियाजियां, हम उस तक नहीं पहुंच सकते। एक बच्चा पैदा हुआ, फिरौन ने हुक्म दिया था जो बच्चा पैदा हो, यह वाकया जरा गौर से सुनिएगा, फिरौन ने हुक्म दिया जो बच्चा पैदा हो उसको कत्ल कर दो। 70,000 उसने बच्चे कत्ल कराए, उस बच्चे का नाम मां ने मूसा रखा। मां ने कहा अपने हाथों से कत्ल नहीं करती, संदूक में ताबूत बना के उसने पानी में छोड़ दिया। अल्लाह पाक ने जिब्रील को हुक्म दिया इसको उठाओ, गार में रखो, रोजाना दूध और शहद इसको चटाओ, इसकी परवरिश करो। उसकी परवरिश जिब्रील ने की, जिसकी परवरिश जिब्रील ने की। एक मूसा वो है, एक और मूसा पैदा हुआ। फिरौन ने कहा जो बच्चा पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए। मां ने कहा अपने हाथों से कत्ल नहीं करती, उसको संदूक में, ताबूत में बना के पानी में छोड़ दिया। फिरौन की बीवी बैठी थी, उसने देखा जा रहा खूबसूरत बच्चा, उसने बच्चा उठाया, उसका नाम भी मूसा था। उसकी तरबियत की फिरौन के घर, जिसकी तरबियत जिब्रील ने की, वो सामरी बना, बुतपरस्त बना, उसका नाम भी मूसा था। और जिसकी तरबियत फिरौन ने की, वो मूसा कलीमुल्ला बना और बुत शिकन बना और अल्लाह की तौहीद को आलम में फैलाने वाला बना। उसकी शान बेनियाजियां हैं, हम नहीं पहुंच सकते। जिब्रील जिसकी तरबियत कर रहा, जिब्रील तरबियत नहीं, उसकी गिजाएं उसको नशोनुमा जरिया बना, दूध और शहद पिलाता रहा, गार में बड़ा हुआ, जवान हुआ, उसने सामरी का लकब पाया, नाम उसका मूसा था, उसने बछड़ा बनाया, उसने बुत परस्ती सिखाई। और बुत परस्ती की इब्तदा इस वक्त दुनिया में उसी के जरिए है, और सारी दुनिया की बुत परस्ती की सजा उसे मिलेगी, बुनियाद वही है वो जालिम। और एक वो है जो मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के घर उनकी परवरिश हुई, वो अल्लाह के कलीम और नबी बने हैं, और जिनका 28 पारों में अल्लाह ने नाम लेके तस्करा किया है और बाकी 2 पारों में इशारों से तस्करा किया है। किसके साथ क्या मामला करें, हमें क्या खबर। इसलिए हमारे सिलसिले में और हमारे बड़े फरमाते हैं, एक तस्बीह सुबह शाम इस्तिगफार करो, दूध पाक, 3 तस्बीहात, तीसरा कलमा, उसमें एक तस्बीह सुबह शाम इस्तिगफार भी है। कि मौला मेरी नजरों का, मेरे बोलों का, मेरे जज्बों का गुनाह, उस जज्बों के गुनाह में बदगुमानी भी है, अल्लाह इन सारी चीजों के खताओं और गुनाहों से मैं तेरी माफी और मगफरत में आना चाहता हूं, और तेरे फजल और तेरी रहमत में आना चाहता हूं, और तेरी अता और तेरे करम में आना चाहता हूं। अल्लाह तो अपनी रहमत और हिफाजत अगर कर देगा तो मेरी माफी और मगफरत का निजाम बन जाएगा, और अगर तेरी माफी और मगफरत का निजाम ना बना, वो बख्शा जाएगा और मैं पता नहीं अटक जाऊं और फंस जाऊं। मेरे एक उस्ताद थे, उनको निक्के शाह साहब कहते थे, रहमतुल्लाह, नेक आदमी थे। एक गोरकन ने मुझे बताया, उनका नाम बशीर था, फौत हो गए। मैं कब्रिस्तान में अम्मा अब्बा के मजारात पे गया तो कब्र खोदी जा रही थी, मैं शाह के साथ बैठ गया, फिर मैंने उनसे हालात लिए। कहने लगे कि मुझे शाह साहब ने कहा तुम कब्रें खोदते हो, तुम्हें पता चल जाता है कि बंदा जंती है या जहन्मी है, हल्का या भारे कर। हाँ। कहा कैसे। कहा उसके कई अलामतें हैं, एक अलामत यह भी है कि हमें कब्र जगह देती है और खुलती चली जाती है, खोदते में कोई थकते नहीं। एक यह है कि खोद खोद के हमारी हड्डियां चूर हो जाती हैं और कब्र फिर तंग हो जाती है। अलामतें बताई, उनमें अलामत एक ये भी है, जब कब्र का पहला पाया मैयत का, मैयत जब दाखिल होती है कब्रिस्तान में तो कब्र एक झटका लेती है, और मिट्टी जो खुदी होती है दाएं बाएं से, उसके चंद कंकर झटका लेने से अंदर गिरते हैं और उसमें लकीरें पड़ जाती हैं, तो हम समझ जाते हैं ये मैयत जो है ये भारी है। और जो कब्र झटका नहीं लेती और लकीरें नहीं पड़ती तो हम समझ जाते हैं ये मैयत। तो कहा निके शाह साहब ने वो जनाजा पढ़ाना था, उनका एक करीबी दोस्त था और नेकी में मशहूर था, उन्होंने कहा मैं जनाजा पढ़ा के साइकिल में पहले आ जाऊंगा और आके कब्र को देखूंगा। उन्होंने कहा देख लेना, पता चल जाएगा आपके दोस्त का क्या हाल है। शाह साहब आ गए, वो बशीर साहब थे, बूढ़े थे, उनके घर में मैं गया था। कहने लगे आके बैठे, हमने देखा कब्र का जब मैयत का जब पहला पाया, यानी मैयत जब कब्रिस्तान में दाखिल हुई, कब्र ने झटका लिया, लकीरें पड़ी, हल्के से कंकर गिरे, मैंने कहा शाहजी आपका दोस्त खतरे में है। कह रहे वो तो बहुत नेक था। कहा कोई ऐसी खता है उसके लिए इस्तिगफार करें। किसी के बारे में क्या फैसला कर सकते हैं, ये जहन्नमी है। यह रोजा ये सबक देता है कि किसी पे एतमाद कर, अगर वो नेक है तो कहां एतमाद कर। अगर वो कहते मैं रोजे रोजे से हूं, मैं रोजेदार हूं, तो उसके इस अमल पे एतमाद कर। मुझे एक दरवेश ने रात को आके छत पे रहे, 2003 की बात है, तीन की बात, दरवेश थे डेरा गाजी खान के। एक मुझे लफ्ज फरमाया तफवीज इल्लाह, लोगों के मामले अल्लाह के सपोर्ट कर, लोगों की टू जस्तुजु में ना रहे, उनके ऐबों को ना कुरेद, बस वो जाने उसका रब जाने, वो जाने उसका रब जाने। और फिर उन्होंने भी फरमाया और बड़ों ने भी फरमाया, और मैं सिर्फ टोकने का हक माँ बाप को है, उस्ताद को है और मुर्शिद को है। रोजा ये सबक देता है कि हम पी जाएं, हम सहम जाएं, सह जाएं, और उसके बारे में अच्छा गुमान करें। उसने कहा मैं रोजे से हूं तो ठीक है, मैं रोजे से हूं। ये जिंदगी का सबक जिसको मिलता है, वो जिंदगी का सबक उसको पक्का रोजेदार बनाता है। और रोजे का मकसद उसको मिलता है कि रोजा हमें ये देना चाहता है, रोजे का फलसफा ये है। मैं बार बार एक बात अर्ज कर रहा हूं, आज 18 रोजे हैं, खत्म होने को हैं, हो गए 18 रोजे, खत्म हो गए बल्कि। तो 18 रोजे जब खत्म हुए तो 18 रोजे में एक बार बार एक बात अर्ज कर रहा हूं, और वह यह अर्ज कर रहा हूं कि याद रखिएगा, याद रखिएगा, रोजा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है। कि भूख और प्यास का नाम रोजा है, इसका नाम रोजा नहीं है। रोजा तो जिंदगी का एक सबक है, और उसका रोज, उसकी सुबह, उसकी शाम जिंदगी का हमें एक सबक, और जिंदगी की एक चाल, और जिंदगी की एक ढाल, और जिंदगी का ओढ़ना बिछोना, और जिंदगी का एक अंदाज देता है। रोजा हमें कुछ सिखाता है, हमें कुछ देता है, हमें कुछ पढ़ाता है, और रोजा हमें कुछ समझाता है। ये रोजा है, और ये रोजा हमें, मुझे भी सिखा रहा, मैं भी इसका तालिब इल्म हूं, आपको भी सिखा रहा। ये सीखते सीखते अगर हम जिंदगी में चले गए, बहुत जिंदगी कामयाब हो जाएगी। इसलिए फरमाते हैं किसी फकीर के पास छोटा बन के आना, बड़ा बन के ना आना, इज्जत और ताज लेकर ना आना कि मैं कुछ हूं, मेरे लिए मसनद बिछाई जाए, मेरे लिए कुर्सियां बिछाई जाएं, मेरे लिए इस्तकबाल किया जाए, मेरे लिए दरवाजे खोले जाएं, मेरे लिए बाहें फैलाई जाएं। नहीं, मैंने जिंदगी में देखा है जो छोटा बन के आता है वही झोलियां भर के जाता है, और जो बड़ा बन के आता है बहुत नुकसान लेकर जाता है। अल्लाह पाक जल्ला शानहु मुझे आपको रोजा और रोजे के मकासद समझने की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم ظلمت نفسي فاغفر لي ظلمت نفسي فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين بس معاف کر دے رحم کر دے बोलूं, लफ्जों, लहजों, हरफों, जज्बों की गलतियों को तरगुजर फरमा दे, इसके मकाफात नस्लों से बचा, माफी रहम और फजल और करम अता और शफकत। आमीन आमीन बिरहमतिका या रब्बी।